بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد والا علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اور اس وقت کا ذکر سنو جب حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60، یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 60، جیسے کہ شروع میں بتایا گیا تھا، اس سورہ میں 5 واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا اور دوسرا واقعہ باغات والے کا اور تیسرا ابلیس کا اور چوتھا یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا یہ واقعہ ہے. بار بار یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن پاک میں قصے جو ہے وہ ترتیب سے پورے طور پر ایک ہی جگہ ایسا نہیں بیان کیے جاتے، اس لیے کہ قرآن پاک وہ قصے کہانیاں کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، رہبری کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اس لیے واقعہ بھی پیش ہوتا ہے تو واقعہ شروع ہوتا ہے، پھر بیچ میں نصیحت کی بات ہوتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں، پھر آگے وہ چیز بڑھتی، پھر جہاں پر رہبری کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، کیا ہے وہ اللہ پاک فرماتے. اس کو میں بتانا ایک مثال سے دیتا ہوں. جیسے استاد سبق پڑھاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے شاگرد اگر بے توجہی کرے تو ارے سیدھا بیٹھو، غور سے سنو. سیدھا بھی بیٹھتے نہیں، بولے تو بھی نہیں بیٹھتے. اب دیکھو سیدھا بیٹھ گئے، اب پھر اس قصہ شروع ہوتا ہے. سمجھ گئے، یہ نصیحت کا پہلو ہے. کیا ہے؟ سیاسی تقریر نہیں، اسپیچ نہیں ہے، بلکہ سدھارنا، جی بنانا، اخلاق سکھانا، اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی ایسی ہوتی، کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوں، درمیان میں کچھ چیز پیش آئی تو فوراً اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جی تنبیہ کرتے، اس کو بتاتے، پھر آگے بڑھتے. اس طرح سے یہ سب ہوتا ہے. سمجھ گئے. تو قرآن پاک میں بھی واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں جہاں جو نصیحت کی بات ہوتی ہے بیچ میں قرآن وہ نصیحتیں بیان کرتا ہے. اب ہمارے کو پریشانی کیا، کب دے کے تمہیں گھر سے وہ قصے بولو نا، بھائی کہاں سے بھی پوچھتے ہیں وہ قصے کی پورے بولتے نہیں تو دوسرے دوسرے باتیں شروع کر ڈالتے. یہ کیا بھائی، ہمیں کیا شروع کرتے ہیں، اللہ بولتا ہے، سمجھا نا کہ نہیں کی. تو اس لیے عورتوں کو قصے کہانیاں سن سن کو عادت تھی، لمبا قصہ اون اون کر کو बोलते रहना, सब सुनते रहना, ये उनकी मेंटालिटी है, समझ रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, अल्लाह पाक जैसा बयान फरमाते हैं उस तरीके से। बहरहाल अब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए गौर से सुनिए, कुछ चीज़ें होती हैं तशरीई, शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं तकवीनी। क्या ये तकवीनी क्या है, ये निज़ाम हमारे को समझ में नहीं आता। अच्छा, और ये अहकाम हमको नहीं दिए जाते, हमारे को शरीयत के अहकाम दिए जाते हैं, ये करो ये मत करो, ऐसा करो इस तरीके पर। तो ये शरीयत के अहकाम के हम पाबंद हैं। एक निज़ाम होता है तकवीनी, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह तबारक व ताला कराते, वो कुदरत के करिश्मे होते हैं। तो वो कुन फैकुन का मामला होता, अल्लाह कहते वो चीज़ हो जाती। इसको समझने के लिए एक सुन्नतुल्लाह है, एक कुदरतुल्लाह है। क्या है सुन्नतुल्लाह माने, अल्लाह का तरीक़ा। यहाँ सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह की, इतना हज़रत सुन्नत ये कि अल्लाह की सुन्नत करके नवा शुरू करे ना करके, मतलब तरीक़ा किसी भी काम को अंजाम देने का एक तरीक़ा जो होता है वो सुन्नतुल्लाह कहलाता है। मिसाल के तौर पर इंसान की पैदाइश, उसके लिए लंबी चीज़ें हैं, निकाह होना, फिर आगे के मरहले, फिर इस तरीके पर। तो मियाँ बीवी माँ बाप औलाद के लिए ज़रूरी हैं, तो माँ बाप होंगे तो औलाद होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया, ये है कुदरतुल्लाह। क्या किसी को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया, ये है कुदरतुल्लाह। समझ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बग़ैर बाप के पैदा कर दिया, अरे कैसा वो, हाँ तो इसलिए माँ को ताना देने लगे, या उख्ता हारून माँ कान अबू कुमरा सऊ व माँ कान तुम की बगिया, तू क्या काम करी ना, तू तुम्हारे बाबा भी ऐसे नहीं, तुम्हारी अम्मा भी ऐसी नहीं ना, तू क्या ऐसा काम कर को बच्चा जनी ना, ऐसा बोलना शुरू किया। अल्लाह पर क्या गुजरी रहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर, हाँ जबकि उनको कोई मर्द ही नहीं छुआ। तो अब औलाद हुई है, तो ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने फूंक मारी, वो लंबा वाक़या है। अच्छा, इसी को अल्लाह तबारक व ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, तुम्हारे को बग़ैर मर्द के बच्चा पैदा होने पर ताज्जुब है, तो सुनो, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है। यहाँ तो मर्द के बग़ैर, वहाँ तो दोनों के बग़ैर, मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, समझ गए। तो जो अल्लाह मर्द और औरत के बग़ैर बच्चा पैदा कर सकता है, तो वो बग़ैर मर्द के पैदा करे, बाप के पैदा करे, तो क्या ताज्जुब है, समझ गए। अब लोग क्या करते, पूछते पहले मुर्गी की, पहले अंडा की लेते। अब अंडा बोले तो मुर्गी नहीं सो अंडा कैसा आई। अच्छा अंडा नहीं, अंडा बोले तो मुर्गी नहीं सो अंडा कैसा, अंडा बोले तो हमें मुर्गी बोले तो अंडा नहीं सो, ये फलसफा चुप के तू भी लाल को कला में एक रहते। वो मुर्गी पहले की, वो अंडा पहले की, हम ना कहीं समझ नहीं क्या। अल्लाह जो चीज़ पैदा किया ऐसे लोग बोलते हैं, अकल बड़ी की भैंस बड़ी की, घर पर जोड़ी ने जो सवाल लिया, क्या अकल बड़ी की भैंस बड़ी की, पूछने की चीज़ क्या बोला। अरे भैंस है एक जानवर है, उसके मुकाबले चूड़ी बड़ी की भैंस बड़ी की, अगर कोई एक चीज़ पूछे तो क्या की, समझ गए क्या। जोड़ की चीज़ नहीं, बेजोड़ सवाल, ये सब बेकार की चीज़ें समझते हैं। उसी में से ये अंडा पहले की मुर्गी पहले की, अगर को समझते हैं, सुनो और से। इसमें से एक बारीक बात मैं बोलता हूँ, उसको ज़रा तवज्जो से सुनो। आजकल के फितने के ज़माने में दीन के नाम पर फितने उठ रहे हैं। वो क्या आज ही सुन ला भैया, चलेंगे चलेंगे जो नो।
अच्छा बाद लोग पूछेंगे आकर आपको,
आप लोग हनफी बोलते हैं ना जी, हनफी असल की मोहम्मदी असल की, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना, तो हमें मोहम्मदी होना कि नहीं, हनफी होना कि अबू हनीफा के मानने वाले होना कि, ऐसा पूछते। अबू हनीफा उम्मती नहीं क्या और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है नहीं क्या, तो बोले तो मोहम्मदी बोलना सो क्या हनफी बोलते ना तुम लोग, कैसा ऐसा करके एक सवाल उठाते। अब थोड़ी देर के लिए हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता, सब जितना बड़ा वो जितना पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऐसा करके सुनो। वर से कभी भी किसी चीज़ के बारे में जब सवाल होता है तो उसी की जिन्स उसी की किस्म से सवाल किया जाता है, समझ रहे क्या? अब यहाँ दो को मिलाकर पूछ रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह उम्मती हैं, नबी उम्मती मिलाकर पूछ रहे हैं। पूछने का तरीका ऐसा नहीं होता, आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम की उम्मत में हैं या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, ऐसा पूछने का तरीक़ा। तो नबी नबी की उम्मत, ये नबी की उम्मत है या वो नबी की उम्मत, ये फलां जो थे वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम की उम्मत में थे या हज़रत ईसा अलैहि सलाम की उम्मत में थे, ये सवाल ठीक है, समझ रहे हैं? तुम्हारी ट्रेन कब है पूछे क्या, अब 7 बजे बोले तो कैसा सवाल करेंगे, सुबह के साथ की नहीं रात के साथ की, ऐसा इतना सवाल करेंगे बोला। अब 7 बजे का तो सुबह के साथ की पूछताल को उसके बाद बेजोड़ सवाल करें, 2015 में क्या करें, ऐसा कौन तुम पूछते हैं सुबह के साथ की या शाम के साथ की, तो सुबह बोले तो उसके मुकाबले में शाम, समझ रहे हैं क्या? ऐसा सवाल होता तो बेजोड़ सवाल नहीं होता। तो वैसे ही इमाम अबू हनीफा की नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सवाल ही बराबर नहीं। तो उम्मत के लिहाज से हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, समझ रहे हैं, तो हम नबी उन्हीं को मानते हैं। हाँ कुछ मसाइल में समझ रहे हैं, सोचने का फहम का जो अंदाज होता है उसमें तरीक़ेकार में हम अपनी अकल को लड़ाए बगैर, अपनी अकल से सोचे बगैर, बड़े जो बोलेंगे उनकी समझ पर एतमाद करते हुए उस चीज़ को हम लेते हैं, इतना अच्छे से मतलब समझ रहे हैं। वो भी ऐसे मसले जो 2 भी 2 4 की तरह नहीं है, वो ऐसे मसले नहीं, समझते हैं क्या? वाज़े जो मसले होते हैं वो साफ हैं, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, वो बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ तुम पर हराम, इसको सब मानते थे। हुर्रिमत अलैकुम अलमैतु वद्दम वलहमुल खिंजीर, तुम पर क्या है मुर्दा हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, इसको सब मानते हैं, ऐसी चीज़ में इख्तलाफ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मतलब के समझने में 2 तरीक़े से भी बात हो सकती, ऐसा भी समझ सकते हैं वैसा भी समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ अभी इसका फैन डालो अलहमदुलिल्लाह, ऐसी चीज़ में जो है तो समझने का जो तरीक़ा होता है तरीक़ेकार, उसमें बड़ों में हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में, हज़रत ताबईन में, हज़रत आइम्मा इकराम में, उनका समझने का एक तरीक़ा होता है, इनके समझने का एक तरीक़ा होता है। तो इसलिए हम अपनी अकल पर एतमाद किए बगैर, अपनी अकल से समझे बगैर, हम उन पर एतमाद करते हैं, उनकी जो बताई हुई चीज़ है उसको लेते हैं, समझ रहे भाई? इसलिए आजकल कलाने वाले बहुत रहते हैं, ये हनफी शाफी सब कब शुरू हुए, होना को तो मोहम्मद ही होना सोच नहीं गया, ऐसा सब बोलते। तो इसलिए सवाल का अंदाज ही क्या है गलत है, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो बहरहाल मैं जो बोल रहा था वो बात ये थी, कुछ चीज़ें होती जिनका हुक्म हमें दिया गया होता उस पर हमर को अमल करना है, वो तशरी अहकाम है, क्या बोलते हैं तशरी। कुछ चीज़ें होती वो हमारे हाथ की नहीं है, हमारे करने की नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला कराते हैं, वो तकवीनी अहकाम होते हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जैसे चाहे कराएं, वो उन्हीं में से ये जो वाकया है हज़रत मूसा और हज़रत हज़रत अलैहिस्सलाम का वाकया,
तो चीज़ें ऐसी थी कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तकवीनी चीज़ें उनको समझाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तशरीह अहकाम बताए गए थे। तो हुआ क्या किस्सा ये सुनो, अब औरत के सब अदब से बैठ को किस्सा सुनो।
क्या
किस्सा का तो शुरू है, सुनो तरतीब से किस्सा सुन लग जाओ, इधर उधर मत देखो, बच्चों को भी बिठा दो, खामोश बैठकर सुनो। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन। जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी खड़कर खुतबा देंगे तो कितना ज़बरदस्त रहेगा ना, कैसी इल्म की बातें रहेंगी, कैसी गहरी बातें रहेंगी, समझ रहे हैं, तो सुनने वालों पर भी असर होता। अब है कि नहीं किया, आजकल मुंह के मज़े एक लगा कान के मज़े हो गए, वो क्या करते हो, मुंह का मज़ा ये होटल में कैसा है, वो होटल में कैसा जा खाते ना, वैसा बयाना भी कान का मज़ा होगा, इन्हों कैसा बोलते हैं, उन्हों कैसा बोलते हैं, इनकी तकरीर कैसी रहती है, उनकी तकरीर कैसी रहती है, लोगों करना उरना क्या भी रहता नहीं, मज़ा लेने का रहता, समझते हैं क्या, ऐसा रहे तो फिर अमल की तौफीक कैसा मिलेंगी। इसलिए बात दीन की है, कौन बोले तो क्या, कुरान हदीस है, समझते हैं, इन्हों बोले तो भी वो, जिन्हों बोले तो भी वो, इसमें मज़ा लेने की कोई बात नहीं है। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा इरशाद फरमाया तो लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन। अब जाहिर बात है पूरी उम्मत में सबसे अफजल नबी होते हैं। अच्छा, अब नबी का इल्म सबसे ज़्यादा होता, समझ गए। एक बार जो है हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुछ लोग पकड़ लिए, क्या तुम लोग देवबंदी लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं बोलते ना, ऐसा करके क्या। तो हजरत जो है, अरे क्या बात बोल रहे हो तुम, यहाँ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारा इल्म गैब दिया था, अगर बोले क्या बोले क्या बोले बहुत सारा इल्म। अब पूरा इल्म, इल्म उनका मतलब जो बोलने का होता है माकान मा यकून का पूरा इल्म गैब का जो है वो रसूलुल्लाह को है करके उनका मानना। लेकिन बोलने वाले हजरत कैसा बोले, बहुत सारा वो अल्लाह बताए, हमारे मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें गैब की मालूम थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा क्या है, इल्म गैब दिया गया था, सारा पूरा माकान मा यकून का नहीं, लेकिन हमारे मुकाबले में बहुत सारा क्या है, इल्म गैब दिया गया था, इतना फर्क है, समझ रहे। तो अल्लाह के बराबर ठहरा कर अल्लाह का जैसा इल्म है वैसा पूरा इल्म ये नहीं, लेकिन हमारे मुकाबले में बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको दिया गया था। तो खैर, जब नबी ने तकरीर की, खुतबा इरशाद फरमाया तो लोगों के सवाल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जाहिर बात है कि उनका इल्म सबसे बड़ा है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई था नहीं, इसलिए फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। ये हकीकत भी है, ये तमाम उम्मत में नबी जो है सबसे ज़्यादा इल्म वाले होते हैं। लेकिन बात यह है, अब नबियों के ऊपर अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह तबारक तआला नबियों को भेजते हैं, है नहीं, तो ये अल्लाह तबारक तआला अपने मुकर्रब बारगाह अंबिया को ख़ास तरबियत देते हैं, इसलिए ये बात अल्लाह तबारक तआला के अदब का जो तकाजा था उसके लिहाज से ज़रा मेल नहीं खा रही थी। तो बोलना यह था कि सबसे ज़्यादा इल्म किसका, अल्लाह का है, या अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानते हैं, समझ रहे हैं। तो अदब का तकाजा ये था कि इसको अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी ये कह देते कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, बस इतनी सी बात। इस पर अल्लाह तबारक तआला अब आगे जो है कुछ चीज़ें हमारे वास्ते समझ रहे हैं, हमारी रहबरी के लिए हज़रत मूसा अलैहि सलाम को वास्ता बनाकर सिखा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के जवाब पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाराज़गी का इजहार हुआ। मूसा अलैहि सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमा अल बहरैन पर है, वो आपसे ज़्यादा इल्म वाला है। तो जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम को ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है तो मुझे उनसे इस्तेफादे के लिए सफ़र करना चाहिए, अल्लाह तो आप मेरी रहबरी फरमाइए। तो इसलिए अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे उनका पता उनका निशान बताइए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देखो रास्ता बता रहे हैं, वो भी देखो कैसा फरमाया, एक मछली अपने जंबील में रख लो और मजमा बहरीन की तरफ सफ़र करो। अच्छा, अब आज के ज़माने में जो है एक हार्ड बॉक्स में किसमें रख लो, हार्ड बॉक्स में मछली तल को रख लो। अब मछली जो है खाने के वास्ते रही तो पका कुछ काट को पका कुटना रहेगी, खाने की मछली नहीं जिंदी खा जाएगी, बोलो भाई पकाई हुई ना रहेगी। अब हमें हार्ड बॉक्स में रख लग जाते बोले तो कौन सी मछली, वो पकी हुई। तो वैसा एक जंबील में जो है मछली, अच्छा अपनी जंबील में रख लो और मजमा बहरीन की तरफ सफ़र करो। अब मजमा बहरीन क्या है, जहाँ दो पानी आकर मिलते, दो समंदर मिलते, दो दरिया मिलते, इस तरीके से ये कहाँ है मुख्तलिफ जगहों पर बताते। हम लोग मिस्र गए, कहाँ गए तो ये एक शहर है इस्कंदरिया, वहाँ गए, वहाँ मजमा बहरीन है करके बताए। तो हम वहाँ सफ़र करके गए, दिमियात एक इलाका, तो वहाँ जाकर देखे हम, वहाँ पर वो कतवा लगा हुआ है मजमा बहरीन करके, इधर पानी है उधर पानी है, इसका रंग अलग है उसका रंग अलग है, इसका मज़ा अलग है उसका मज़ा अलग है, ये बिल्कुल आँखों से हम देखें। और वहाँ पर वो पत्थर पर जो है मजमा बहरीन करके लिखा है। अब ये है वो बताते हैं, लेकिन मुतय्यन तौर पर वही है क्या वल्लाहु आलम। लेकिन इतना तो हम वहाँ तक जाकर देखे, मिस्र तक गए वहाँ तक देखे, इतना तो ज़रा बोल सकते आपके मुकाबले में ज़रा मेरे पास, मैं वो समंदर की वो पानियों की तस्वीरें मैं लिया हूँ, वो मेरे पास हैं, मैं खुद लिया, लेकिन एक भी जानदार की तस्वीर नहीं है, एक हैवान की भी नहीं है, कुदरत के करिश्मे हैं वो बिल्कुल साफ तौर से जो है नज़र आते हैं। उसके वास्ते घर को आ जाना को पीछे, हजरत ज़रा दिखाओ ना, हजरत ज़रा दिखाओ ना, हजरत घर को मुझे सोने देना नहीं सका, बस लाइन लगा ली गया, फीस बने तो दिखा दो क्या बोलते बाबा, वहाँ जाकर एग्जीबिशन में फीस बन को देखते नहीं। वहाँ मिस्र में हमें फिरौन की लाश को देखे, कहाँ देखे, एग्जीबिशन में देखे, समझते क्या, वो मरा पड़ा है, हाथ बंधे हुए हैं, समझते हैं, उसकी मम्मी करके रखे हुए हैं। मेरे हाल बहुत सारी चीज़ें उस सफ़र में, हम कोहेतूर गए थे जी, एक पहाड़ उसका रंग बिल्कुल सियाह है, बताया जाता है कि उस पर तजल्ली हुई थी जिस पर वो खाकस्तर हो गया, जल गया था एकदम, दूसरे पहाड़ों से उसका रंग जो है बदला हुआ है, काला पहाड़ था और ऊपर जो है चढ़ना पड़ता था 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ना कहते हैं पहाड़ पर, अल्लाह अकबर, कमर किसको खिसकी, मुझे पाँव में दर्द थी, मुझे हुआ कि नहीं, ऊँट वाला था उसमें ऊँट पर बैठ गया, ऊँट रखते वहाँ, वो ऊँट पर बैठ कर जाते हुए पहली बार सफ़र ऊँट का, वो भी पहाड़ के ऊपर, एक एक कदम रखे तो कब फल्टी मार दूंगी कब नीचे गिर दूंगी करके, एक एक कदम पर भी पूरी ज़िंदगी में उतना कलीमा नहीं पड़ा रहूँगा, उस सफ़र में उतना कलीमा पड़ा मैं, अल्लाह 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 करके। वो ऊँट भी ऐसा लेकर जाता था अंधेरे में, हमें अब गिरा तब गिरा करके सोचते, लेकिन वो बराबर अंधेरे में ऐसा जाता था पहाड़ के ऊपर, अल्लाह की कुदरत, इतना बड़ा जानवर सुभान अल्लाह, एक पैर उसका फिसलिया था नीचे आकर पड़ना, लेकिन अल्लाह की क्या मेहरबानी, उसकी ऐसी रहबरी होती थी, आराम से जो है वो रास्ता बताता था, हम लोग जा रहे थे, हम लोग ऊंट पर थे, हज़रत सलाहुद्दीन सैफी रहमत बरकातुहू उनके साथ हमारे साथी थे, लेकिन वो हिम्मत करके पैदल चले। वो पैदल चले तो एक बिल्ली जो है उनको रहबरी की, सुभान अल्लाह। वो जाती 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 ऊपर मंजिल तक उनको पहुँचा कर फिर वो बिल्ली चले गई, सुभान अल्लाह। ये भी देखे हमें कुदरत के नज़ारे। बहरहाल तो कोहे तौर पर गए, हमें ऊपर इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, अल्लाह की पना, डर शुरू हो गया, कहाँ हाथ पर पड़ जाएगी कर कर, सुभान अल्लाह। ऐसी सर्दी जब ही समझ में आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बीवी से फरमाए, यहाँ रुको जो है, मैं आग देख रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं जो है आग का शोला लाता हूँ ताकि तप उस पर जो है क्या करें हम, ताप लें, ये गर्मी से जो है उसकी गर्मी से ले लें, या फिर उजाले में जो है हमारे को रास्ता मालूम हो जाए। ये जो नज़ारा देखे अल्लाह हुब्बा, तो वहाँ पर वो जो दरख्त में से आग आई, आवाज़ आई थी, वो बर्निंग बुश करके एक दरख्त है, वो क्या बताते हैं वो दरख्त करके, बहरहाल वो है क्या मालूम नहीं, लेकिन बर्निंग बुश करके है। वहाँ तक भी हम गए जी, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये सब अल्लाह पाक ने हमें बताया, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी करम फरमाई है। तो बहरहाल मजमाल बहरीन की बात आ गई, तो फरमाया जिस जगह पहुँच कर ये मछली गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे उस बंदे के मिलने की है। और अल्लाह ताला की तरफ से ये बात बताई गई कि तुम जिस मछली को लेके जा रहे हो, एक वक्त एक जगह ऐसी आएगी कि वो मछली गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, जहाँ वो मछली गायब होगी वो जगह जो है वो मजमल बहरीन है। वहाँ हमारा एक बंदा है जिसके पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं है। ये वो निशानदेही थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली जंबील में रख ली और चल दिए। उनके साथ उनके खादिम यूशा इब्न नून भी थे, ये खादिम थे। दौरान सफ़र एक पत्थर के पास पहुँच कर उस पर सर रख कर लेट गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए थे ना, तो देखिए अचानक ये मछली हरकत में आ गई और जंबील से निकलकर दरिया में चली गई। वो हाटबाग से निकलकर सीधा चली गई और मछली के ज़िंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मौजूदा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई, अल्लाह ताला ने वहाँ पानी को बहने से रोक दिया, सुरंग जैसी वो चीज़ बन गई। तो मछली पानी में जा रही है और वहाँ अल्लाह पाक ने सुरंग बना दी और उस जगह पानी के अंदर एक सुरंग जैसी हो गई। अब ये मछली निकली, पानी में गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, यूशा इब्न नून इस अजीब वाक़े को देख रहे हैं, और जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से क्या बात बताई गई, जहाँ ये मछली ज़िंदा होकर जाएगी वहाँ पर हमारा वो बंदा है, वो आपको मिलेगा। लेकिन खादिम इसको देखा भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भूल तारी कर दी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। फिर सोकर उठकर फिर चले 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 चलते हुए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। जब बेदार हुए तो यूशा इब्ने नून मछली का यह अजीब मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बतलाना भूल गए। अल्लाह भुला देते, क्या करते हैं, बाज़ वक्त मर्दा भूलते हैं, बाज़ वक्त औरतें भूलते हैं, क्या ये भूल बाज़ वक्त नेमत भी होती, बाज़ वक्त ज़हमत भी होती, दो भी है ये नहीं की। कभी भी क्या करते हैं, छोड़ डालो इन्हें, ज़रा सोलह की सौ जान दे करते हैं, क्या है उन्हों बोलते कहीं को उठाई नहीं तू मुझे घर को जान दे, तुम्हें सोलह की ना सो जान दे घर को छोड़ डाली घर को बोलते। कभी भूल जाते हैं, दोनों सो जाते हैं, नींद पूरी हो जाती, ये भी एक बड़ी बात है समय। तो इसलिए सब अल्लाह ताला की तरफ से। और उस जगह से फिर रवाना हो गए, पूरे एक दिन एक रात का मजीद सफ़र किया, वहाँ से चलते 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 एक दिन एक रात सफ़र किया। जब दूसरे रोज़ की सुबह हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीक से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, हॉट बॉक्स में था नहीं है, वो कौन सी कंपनी का है, बार बार फटा फटा घाट भाग साठ भाग बोलती ना, जम्बिल को समझाने करते बोलता हूँ उसमें, समझ गए। खैर अब जो नाश्ता लाओ बोले तब उनको बात याद आई, क्योंकि इस सफ़र में काफ़ी थकान हो चुकी है। अब देखिए शुरू अपनी जगह से चले थे अच्छा, और जहाँ सोए वहाँ तक थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन वहाँ से एक दिन का सफ़र तय किया तो बहुत थकान महसूस होगी। तो इसलिए अल्लाह वाले एक बारीक बात बताते हैं, अपने मकसद से हटकर जब इंसान आगे बढ़ता है तो मशक्क़तें उठानी पड़ती है, परेशानियाँ आ जाती हैं। अपने वक्त में अपने रास्ते पर जाता रहता तो सीधा जाता रहता है, समझ रहे हैं। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बक़ज़ा इलाही मूसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले थकान भी महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि जिस जगह पहुँचे थे उससे आगे निकल गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता तलब किया तो यूशा इब्ने नून को मछली का वाक़या याद आया और अपने भूल जाने का उज़्र किया। अब ये भुलाता कौन, कि शैतान ने मुझे भुला दिया कि उस वक्त आपको इस वाक़े की इत्तला न की। अब देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितना गुस्सा आना था, हालांकि बहुत जलाली पैगंबर है नहीं है, एक बार पत्थर कपड़े ले भागा तो उसे पत्थर को मारना शुरू कर डाले, दे रहे मेरे कपड़े, दे रहे मेरे कपड़े को, ऐसा मारे ही पत्थर पर गोल पड़ गए कहते हैं, लकीरम पड़ गए, वैसे जलाली नबी, समझ गया। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला कुछ उनको समझाना चाह रहे थे तो इसलिए नाराज़ नहीं हुए कि उस वक्त आपको इस वाक़े की इत्तला न की, और फिर बतलाया कि वो मुर्दा मछली तो ज़िंदा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चली गई, आज बोल मैं शागिर, समझ गया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही तो हमारा मकसद था, यानी मंजिल मकसूद वही थी जहाँ मछली ज़िंदा होकर गुम हुई है। तो अब हज़रत फरमाते हैं चलो वापस, चलो चलो वापस, अब फिर वापस जो है वहाँ से उस मकाम पर पहुँचते हैं। इसके बाद का वाक़या आगे आ रहा है। तो बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, तकवीनी चीज़ें, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है शरीयत के मुकल्लफ़ हैं, शरीयत के जो क़वानीन होते हैं उस पर हम उनको अमल करना, समझ रहे हैं। इसी में से करामतें भी हैं, अल्लाह वालों से कभी करामतें सादिर होती, समझ गए। एक बुज़ुर्ग एक बार जो है हाउस पर वो मुसल्ला बिजाक नमाज़ पढ़े, किस पर, हाउस है नहीं पानी का, उस पर नमाज पढ़े, शागिर्द देख लगता। एक दिन वो हाउस करने गए तो पैर फिसल को भोंक करके पानी में पड़ गए, तब शागिर्द को लगे थे क्या हजरत परसों देखे तो मुसल्ला बिजाक पानी में नमाज़ पढ़ लगते, आज देखे तो लुढ़क को अंदर पड़ गए ना करो। बोले तो बेटा मेरा क्या भी नहीं है, जब अल्लाह उस पर पढ़ाना सोचा नमाज पढ़ाया, जब मुझे अब इसमें पढ़ाना उसमें मुझे डालना सोचा मुझे डाल डाला, मेरा क्या भी नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए औलिया इकराम से करामत जो होती है हर वक्त वो नहीं दिखा सकते करामत, जब अल्लाह चाहते तभी दिखा सकते, समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ करामतों पर ऐसा होगा वैसा होगा अगर को क्या पूरा ये नहीं कर लेना, कौन करामत नहीं दिखाए उन्होंने चलना वाले नहीं दिखाए सुनो क्या भी नहीं कर को, समझते क्या कितने करामत दिखाए क्या, कौन माने तुम जोरू मानती नहीं क्या, ये कल्ला वाले थे कहते उनकी जोरू कब भी क्या भी बोलते रहते नट्टू नच्चू नट्टू नच्चू कर को क्या। एक बार घर के बाहर आंगन में आग देगी तो ये कल्ला वाले उड़ लग जाते हैं कहते क्या आह यूनो जी अल्लाह वाले वाकई ऐसे रहना हमारे घर में हिंदू यजमान चुपके छोड़ ले बैठती ऐसा घर को सोच लगती। उसके बाद में हजरत आए घर को आती तुम्हें क्या जी तुम्हें चुपके तुम्हें अल्लाह वाले अगर बोलते ना देखो जी वहाँ कैसा उड़को जा रहे थे उनो जी अल्लाह वाले हो तो ये मई गए उन्हों को तो उसके वास्ते जरा बिंगा बिंगा उड़क जा रहे थे मई कर को बोलती फिर क्या कर डाली क्या सीट फलटा डाली समझते क्या वैसा कौन मानते तुम्हें कौन मानती नहीं घर वाली मानती नहीं समझ गए क्या। हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब खुश रहते कब नाराज़ रहते मेरे से मेरे को मालूम बोले वो कैसा मालूम होता मेरे से खुश रही तो रब्बा मोहम्मद करके मोहम्मद के रब की कसम खा के ऐसा बोलती मेरे से नाराज है क्या तू? मेरा नाम लिए बगैर इब्राहिम के रब की खसम कर बोलती, मैं जब समझ जाता क्या कि हैरे दाल में काला कर, समझ गए? तो बोली या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ आपके नाम को उस वक्त नहीं लेती, भूलती हूँ, आपको नहीं भूलती हूँ, ये कह रहा, समझते हैं? ये तो मोहब्बत दिल में थी उनके, इसलिए ज़रा मियाँ बीवी क्या जी आगे पीछे होता जो एडजस्ट कर लेना, वो 600 समझने का, एडजस्ट करना सीख गए तो ज़िंदगी आराम से गुजरती, एडजस्ट नहीं करे तो रोज़ उसको रोज़ पंचाता है, चख पख टखू बिने बेलन उठा खूब थी उन्हें ये उठा मारता, और बोले नहीं आज हजरत थी, रोज़ धर्म के किस्से सुन 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 कर जज्बा आ जाता, कहते हजरत को क्या करेंगे, पाँव सुन सुन कर तबीयत सही भी तबीयतें ख़राब हो जाती है, हमें किस्से सुने तो घर के ऐसी पंचायत कई को रहना है, ऐसी नौबत आ गई, ऐसा करके होता, इसलिए एडजस्ट कर लेना, समझते हैं? एडजस्ट कैसा करना है ज़रा आखिर में बात सुन लो, ख़त्म करता हूँ। एक अल्लाह वाले बोले, दुनिया की ज़िंदगी एक सफ़र है, क्या है? दुनिया की ज़िंदगी एक सफ़र है, इंशाल्लाह ये मेरी मिसाल जो है बहुत काम आएगी, बहुत से लोग मुझे दुआ देंगे इंशाल्लाह, मर्द भी देंगे औरतें भी देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोग सामने मुझे देख रहे हैं, दूसरे नहीं देख रहे हो, देखे तो मिसाल समझ में आती है, खैर घर आंग जाकर सुनाओ इंशाल्लाह, हजरत ऐसा समझाएगा। क्या फरमाए? जिंदगी एक सफ़र है, क्या है? तो इसमें एडजस्ट करना ही असल है। वो कैसा, एक आदमी हमारे बाजू बैठा है, अब बस में बैठे बैठे हमारे ऊपर लुढ़ गया, अब लुढ़ते ही हमें क्या करें, सीधा बैठो जी ऐसा कि सोते क्या करो, तो उन्हें अच्छा सारी सारी सब माफ करो क्या भी ऐसा करके बोला। अच्छा अब संभल कर बैठ गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर जो है हमारे ऊपर लुढ़ गया, तो हम क्या करें ज़रा घूर के देखें, बोला नहीं क्या जी सीधा बैठो बता। अब वही नहीं उन्हें अच्छा कहता, ज़र्रा रफ अंदाज में पहले की तरह माफ़ी जो मांगा था दबकर वैसा नहीं मांगता, कैसा मांगता? अच्छा ऐसा बोलता। अब तीसरी मरतबा लुढ़ के तो कितने बार जी बोलना से जाए तो, मालूम जी मालूम मेरे ऊपर क्या हालत है, तुम्हारे ऊपर आको रहे तो, तुम्हारे हजूर अस्पताल में रही तो, तुम्हारे अम्मा के ये हो गए तो, तुम्हारे ऊपर ऐसे हालत है तो तुम्हें क्या अम्मा, अब हमारे ऊपर रेस हो जाता उन्हें, समझ गए क्या? अब हमें बोलते ही उन्हें रेस हो रहा हमारे ऊपर। अब इसके बजाय हजरत क्या फरमाए, एक बार उन्हें लुढ़कता ज़रा संभाल लो, अब एक बार उन्हें लुढ़कता ज़रा संभाल लो, तीसरी बार उन्हें आने से पहले तुम्हें ज़रा ऐसा सामने हटको बैठ जाओ, उन्हें खुद ही जग झटका ले को संभल को सारी सारी कर कर हो जाता, सबका दो जने का सफ़र क्या हो जाता, आराम से गुजर जाता। ऐसी ज़िंदगी है, याद रखो, बीवी से कुछ हो गया एक बार माफ़ कर दो, अब एक बार माफ़ कर दो, तीसरी बार वो नौबत आने मत दो, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाती है, नहीं तो रफ ट्रेड करो ये लिए उन्हें फे क्या हिस्सा ख़त्म हो जाता। इसलिए ये रिश्ते को निभाना बहुत ज़रूरी है, निकाह असल में है निभा, क्या है निकाह, क्या है असल में है निभा, समझते? इसीलिए उसको अक़्दे निकाह बोलते हैं, बंधन है वो, एक गांठ डालकर बांधे एक रिश्ते में मर्द औरत को, जो अलग अलग थे गैर थे उनको अल्लाह के नाम से इस रिश्ते में जोड़े हैं, इसीलिए इस घाटी को खोलने को तलाक बोलते हैं, घाटी खोलना है अच्छा उसकी तफसीलत है। तो इसलिए आज हमारी ये क्या बोलना जो है बदतदाली की वजह से लोग इस्लाम को जो है बदनाम करते हैं कि क्या तुम्हारे इसमें तीन तीन तलाक है, चार चार जोरवा, इस तरीके की बातें करते हैं, ये हमारी अनबैलेंस्ड ज़िंदगी की वजह से ये सब बातें आ रही हैं। अगर इन चीज़ों को समझ गए तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी हमारी ये सफ़र आसानी से गुजरेगा, समझ। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन दुनिया आखिरत की सही समझ अता फरमाए। واخر دعوانا الحمد لله ختم فاتحه ہیں درود شریف پڑھ لیں اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا باقي أنت الباقي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا، والله ولي المؤمنين، 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد عند كل طرفة عين وعند كل تنفس. اللهم لك الحمد سبحانك ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق والفرقان حق والساعة حق آتية لا ريب فيها. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطاعا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري واسلل سخيمة صدري. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اے اللہ الہ العالمین، ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اس بندہ کہنے سے بھی شرمندہ ہیں، پاک پروردگار کا بندہ تو پاک ہوتا ہے، اے اللہ جی ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے اللہ اعضا جوارح کو آپ کی طاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، اپنا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے دربار میں حاضر ہیں دور دراز سے آئے ہوئے ساتھی بھی ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، اے اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں، اے اللہ وہ نوجوان بھی ہیں جو گناہ سے بچنے کے عزم لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب پر ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ نے تو اے اللہ ڈاکوؤں کے سردار کو ولیوں کا سردار بنا دیا، اے اللہ آپ نے تو شرابی کو اے اللہ اپنی معرفت کی محبت کی شرح پلا کر سب ولیوں کا سردار بنا دیا، اے اللہ آپ کی رحمت کی کیا کیا گن گائے جائیں، کیسے کیسے لوگوں کو آپ کی ایک نظر رحمت نے کیسے کیسے تبدیل کر دیا۔ اے اللہ ہم بھی گنہگار انسان ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنے جرم کو مانتے ہیں، اے اللہ انانیت سے اللہ توبہ کرتے ہیں، عجب سے توبہ کرتے ہیں، گھمنڈ سے توبہ کرتے ہیں، حسد سے توبہ کرتے ہیں، ریا سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ کینہ اور کپٹ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے پاک اور صاف فرما دیجئے، ظاہر بھی ہمارا اچھا بنا دیجئے، باطن بھی اچھا بنا دیجئے، باطن کو ظاہر سے زیادہ خوب و سوار دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو شریعت کے موافق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ سنا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کی دعا ہی نہیں بلکہ گنہگاروں کی دعا بھی آپ قبول کرتے ہیں، بلکہ گنہگار جب آنسو بہاتا ہے ندامت لے کر آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ اس کو عبدی کر کے پکارتے ہیں، اے اللہ آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر ہم مانگتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اب تک کے کیے ہوئے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ظاہری ہو باطنی ہو، دن کے اجالے میں کیے ہوں رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، تقوی نصیب فرما دیجئے، تقوی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، طاعت کی عزت نصیب فرما دیجئے، معصیت کی ذلت سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی ذلت سے قلت سے علت سے حفاظت فرما دیجئے، رحمتوں والا برکتوں والا آسانیوں والا سلامتی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھریلو حالات کو بھی درست فرما دیجئے، بہت سارے احباب اے اللہ اپنے گھریلو پریشانیوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ حضرت کی دعا ہوگی اور اس پر ہم اللہ آپ سے آمین کہیں گے اور آپ قبول کریں، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، اے اللہ واقعی گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان میں الفت و محبت ڈال دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہر ایک کو نصیب توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، ہر قسم کے اللہ شرور فتن سے حفاظت فرما دیجئے، گھروں کے اندر اے اللہ دین کا ماحول پیدا فرما دیجئے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا فرما دیجئے، تعلیم و تعلم کا ماحول پیدا فرما دیجئے، ذکر و مذاکرے کا مراقبے کا ماحول پیدا فرما دیجئے، بے شک آپ سے سچا تعلق ہو جائے تو ساری چیزوں کا چھٹکارا ہو جاتا ہے، اے اللہ ہماری طرف سے کمی ہے کوتاہی ہماری طرف سے ہے، اے اللہ گھروں کی اصلاح فرما دیجئے، ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو علاج کراتے کراتے تھک جاتے ہیں، لمبی لمبی مزمن امراض و بیماریوں سے اللہ ہم سب کا چھٹکارا عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ ایسے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، اے شافی مطلق، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ حکیموں کے حکیم، ساری کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ آج بیماری سے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے جتنا ہاسپٹل کے چکر لگانے سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ جو لوگ ڈاکٹری کے عنوان پر لوگوں کے جیب کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے خون کو چوستے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں رحم اور کرم ڈال دیجیے، اے اللہ علاج کو آسان فرما دیجیے، علاج کو سستا فرما دیجیے، اور ہر ایک کو ہر قسم کی بیماریوں سے ظاہری ہو باطن ہو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مقروضین کو اے اللہ قرض سے نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعا کو محض اپنے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قابل قبول نہیں ہے پھر بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ گنہ گاروں کو بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اور بلکہ گنہ گار کی توبہ پر آپ خوش ہوتے ہیں اور بہت متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عابد کو اپنی عبادت کا سہارا ہوتا ہے، زاہد کو اپنے زہد کا سہارا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم گنہ گار بندے ہیں، اے اللہ گنہ گار بندے کو آپ کا سہارا ہوتا ہے، آپ کے اللہ اس آہ کے آسا کا ہم سہارا لے کر پکارتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجیے، ہماری بگڑی کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک مرو موقع عطا فرما دیجیے، پھر ہم کو تقوی والی زندگی نصیب کرنا نصیب فرما دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان کی ہم مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں آپ کے راہ پر چلیں، ہمت کریں، مگر کیا کریں، ہمارے پیچھے نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں ایک مکھا مارتا ہے تو 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کب تک یہ نفس و شیطان سے کشتی چلتی رہے؟ اے اللہ جی اے قادر مطلق ایک موقع آپ کہہ دیجئے کہ او شیطان دور ہٹ جا، میرا بندہ مجھ کو طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اے اللہ شب نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیجئے، ہمیں غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اب اے اللہ نیکوکاری کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، طاعات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ معصیت اور گناہوں کا چھٹکارا عطا فرما دیجئے، نفس کی ملاوٹوں سے اللہ پاک فرما دیجئے، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے، علم میں برکت عطا فرمائیے، عمل میں برکت عطا فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے رہیں، جیتے رہیں، اور جب آخری وقت ہو تو اللہ انہیں کے ساتھ ہمارا بھی کل حشر میں ساتھ کر دینا۔ ان کے اللہم احینا مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔